गायत्री उन महिलाओं में थी जिनके चरित्र में रमणीयता और लालित्य के साथ पुरुषों का साहस और धैर्य भी मिला होता है। यदि वह कंघी और आईने पर जान देती थीं तो कच्ची सड़कों की गर्द और धूल से भी न भागती थीं। पियानो पर मोहित थीं तो देहातियों के बेसुरे आलाप का आनंद भी उठा सकती थीं। शरद साहित्य पर मुग्ध होती थी तो खसरा और खतौनी से जी भी न चुराती थी। लखनऊ से आए हुए उसे 2 साल हो गए, लेकिन एक दिन भी अपने विशाल भवन में आराम से न बैठी। कभी इस गांव जाती, कभी उस छावनी में ठहरती, कभी तहसील आना पड़ता, कभी सदर जाना पड़ता, बार बार अधिकारियों से मिलने की जरूरत पड़ती। उसे अनुभव हो रहा था कि दूसरों पर शासन करने के लिए स्वयं कितना झुकना पड़ता है। उसके इलाके में सर्वत्र लूट मची हुई थी, कारिंदे आसामियों को नोच खाते थे। सोचती, क्या इन सब मुख्तारों और कारिंदों का जवाब दे दूं, मगर कौन काम करेगा? और यही क्या मालूम है कि इनकी जगह जो नए लोग आएंगे वे इनसे ज़्यादा नेक नियत होंगे। मुश्किल तो यह है कि प्रजा को इस अत्याचार से उतना कष्ट भी नहीं होता जितना मुझे होता है। कोई शिकायत नहीं करता, कोई फरियाद नहीं करता। उन्हें अन्याय सहने का ऐसा अभ्यास हो गया है कि वह इसे भी जीवन की एक साधारण दशा समझते हैं। उससे मुक्त होने का कोई यत्न भी हो सकता है, इसका उन्हें ध्यान भी नहीं होता। इतना ही नहीं था, प्रजा गायत्री की चेष्टाओं को संदेह की दृष्टि से देखती थी। उनको विश्वास ही न था कि उनकी भलाई के लिए कोई जिम्मेदार अपने नौकरों को दंड दे सकता है। वर्तमान अन्याय उनका अज्ञात विषय था, इसका उन्हें भय न था। सुधार के मंतव्यों से वे भयभीत होते थे, यह उनके लिए अज्ञात विषय था। उन्हें शंका होती थी कि कदाचित यह हम लोगों को निचोड़ने की कोई नई विधि है। अनुभव ये शंका को पुष्ट करता था। गायत्री का हुक्म था कि किसानों को नाम मात्र सूद पर रुपये उधार दिए जाएं, लेकिन कारिंदे महाजनों से भी ज़्यादा सूद लेते थे। उनसे ताकीद कर दी थी कि बखारों से आजामियों को अष्टांश पर अनाज दिया जाए, लेकिन यहाँ अष्टांश न देकर लोग दूसरे से सवाई डेवड़े पर अनाज लेते थे। वो अपने इलाके भर में सफाई का प्रबंध भी करना चाहती थी। गोबर बटोरने के लिए गाँव से बाहर खते बनवा दिए थे, मोरियों को साफ करने के लिए भंगी लगा दिए थे, लेकिन प्रजा इसे मुदाखलत भेजा समझती थी और डरती थी कि कहीं रानी साहिबा हमारे घूरों और खत्तों पर तो हाथ नहीं बढ़ा रही हैं। जाड़ों के दिन थे, गायत्री राप्ती नदी किनारे के गांव में दौरा कर रही थी। अब की बाढ़ में कई गांव डूब गए थे, कृषकों ने छूट की प्रार्थना की थी। सरकारी कर्मचारियों ने इधर उधर देख कर लिख दिया था, छूट की जरूरत नहीं है। गायत्री अपनी आंखों से इन ग्रामों की दशा देख कर यह निर्णय करना चाहती थी कि कितनी छूट होनी चाहिए। संध्या हो गई थी, वह दिन भर गांव की थकी मादी बिंदापुर की छावनी में उदास पड़ी हुई थी। सारा मकान खंडहर हो गया था। इस छावनी की मरम्मत के लिए उसने कारिंदों को सैकड़ों रुपए दिए थे, लेकिन उसकी दशा देखने से ज्ञात होता था कि बरसों से खपरेल भी नहीं बदला गया। दीवारें ढहर गिर रही थीं, कड़ियों के टूट जाने से जगह जगह छत बैठ गई थी। आंगन में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। यहाँ के करिंदे को वह बहुत ईमानदार समझती थी। उसके कटुल व्यवहार पर चित्त बहुत खिन्न हो रहा था। सामने चौकी पर पूजा के लिए आसन बिछा हुआ था, लेकिन उसका उठने को जी न चाहता था कि इतने में एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार कानूनगो साहब आए हैं। गायत्री उठकर आसन पर जा बैठी और इस भय से कि कहीं कानूनगो साहब चले न जाए, शीघ्रता से संध्या समाप्त की और पर्दा करा के कानूनगो साहब को बुलाया। गायत्री, कहिए खां साहब, मिजाज तो अच्छा है क्या? आजकल पड़ताल हो रही है? कानूनगो, जी हाँ, आजकल हुजूर के ही इलाके का दौरा कर रहा हूँ। गायत्री, आपके विचार में बाढ़ से खेतों को कितना नुकसान हुआ? कानूनगो, अगर सरकारी तौर पर पूछती हैं तो रुपये में 1 आना, निज के तौर पर पूछती हैं तो रुपये में 12 आने। गायत्री, आप लोग यह दोरंगी चाल क्यों चलते हैं? आप जानते नहीं कि इससे प्रजा का कितना नुकसान होता है? कानूनगो, हजूर यह न पूछें, दोरंगी चाल न चलें और असली बात लिख दें तो एक दिन में नालायक बनाकर निकाल दिए जाएं। हम लोगों से सच्चा हाल जानने के लिए तहकीकात नहीं कराई जाती, बल्कि उसको छिपाने के लिए। पेट की बदौलत सब कुछ करना पड़ता है। गायत्री, पेट को गरीबों की हाय से भरना तो अच्छा नहीं। अगर अपनी तरह से प्रजा की भलाई न कर सके तो कम से कम अपने हाथों उनका अहित तो न करना चाहिए। इलाके का और क्या हाल है? कानून को, आपको सुनकर रंज होगा, सारण में हजूर की कई बीघे सीर आसामियों ने जोत ली है। जगराओं के ठाकुरों ने हजूर के नए बाग को जोत कर खेत बना दिया है और मेड़े खोद डाली है। जब तक फिर से पैमाइश न हो कुछ पता नहीं चल सकता कि आपकी कितनी जमीन उन्होंने खाई है। गायत्री, क्या वहाँ का कारिंदा सो रहा है? मेरा तो इन सब झगड़ों से नाको दम है। कानूनगो, हजूर की जानिब से पैमाइश की एक दरख्वास्त पेश हो जाए, बस बाकी काम मैं कर लूँगा। हाँ, सदर कानूनगो साहब की कुछ खातिर करनी पड़ेगी, मैं तो हजूर का गुलाम हूँ, ऐसी सलाह हरगिज न दूंगा जिससे हजूर के नुकसान हो। इतनी और जोर करूंगा कि हजूर एक मैनेजर रख लूँ। गुस्ताखी माफ, इतने बड़े इलाके का इंतजाम करना हजूर का काम नहीं है। मैनेजर रखने की तो मुझे भी फिक्र है, लेकिन लाऊं कहाँ से? कहीं यह महाशय विकारेंद्र से मिल गए हो तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। उनका यह अंतिम आदेश था कि मेरी प्रजा कोई कष्ट न होने पाए। उसी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यूँ अपनी जान खपा रही हूँ। आपकी दृष्टि में कोई ऐसा ईमानदार और चतुर आदमी हो जो मेरे सिर से यह भार उतार तो ले जाए, बतलाइए। कानून को बहुत अच्छा, मैं ख्याल रखूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, ग्रेजुएट, बड़े लायक और तजर्बेकार खानदानी आदमी हैं, मैं उनसे जिक्र करूँगा। तो मुझे क्या हुक्म होता है? सदर कानून को साहब से बातचीत करूँ? गायत्री, जी हाँ, कह तो रही हूँ, वही लाला साहब है ना, लेकिन वह तो बेतरह मुँह फैलाते हैं। कानून को, हजूर खातिर जमा रखें, मैं उन्हें सीधा कर लूँगा। औरों के साथ वह चाहे जितना मुँह फैलाए, ये उनकी दाल न गलने पाएगी। बस हजूर के 500 रुपये खर्च होंगे, इतने में ही दोनों गांव की पैमाइश करा दूंगा। गायत्री मुस्कुराकर, इसमें कम से कम आधा तो आपके हाथ जरूर लगेगा। कानून को, मुजा मुआजल्ला जनाब, यह क्या फरमाती है? मैं मरते दम तक हजूर की मुगालता न दूंगा। हाँ, काम पूरा हो जाने पर हजूर जो कुछ अपनी खुशी से अदा करेंगी उसी राखों पर रखूंगा। गायत्री, तो यह कहिए, मुझे 500 के ऊपर कुछ और भी आपको भेंट करनी पड़ेगी, मैं इतना महंगा सौदा नहीं करती। यही बातें हो रही थी कि पंडित लेखराज जी का शुभागमन हुआ। रेशमी अचकन, रेशमी पगड़ी, रेशमी चादर, रेशमी धोती, पांव में दिल्ली का स्वयंशाही कामदार जूता, माथे पर चंद्रबिंदु, अधरों पर पान की लाली, आंखों पर सुनहरी ऐनक, केवड़े में बसे हुए आकर कुर्सी पर बैठ गए। गायत्री, पंडित जी महाराज को पालागन करती हूँ। लेखराज, आशीर्वाद, आज तो सरकार को बहुत कष्ट हुआ। गायत्री, क्या करूँ, मेरे पुरखों ने भी बिना खेत की खेती, बिना जमीन की जमींदारी, बिना धन की महाजनी प्रथा निकाली होती तो मैं भी आपकी तरह चयन करती। लेखराज हंसकर, कानूनगो साहब, आप सुनते हैं सरकार की बातें? ऐसी चुनकर कह देती हैं कि उसका जवाब ही न बन पड़े। सरकार को परमात्मा ने रानी बनाया है, हम तो सरकार के द्वार के भिक्षुक हैं। सरकार ने धर्मशाला के शिलारोपण का शुभ मुहूर्त पूछा था, वो मैंने विचार किया है। इसी पक्ष की एकादशी को प्रातःकाल सरकार के हाथ से नींव पड़ जानी चाहिए। गायत्री, ये सुकृति मेरे भाग्य में नहीं लिखी है। आपने किसी रईस को अपने हाथों सार्वजनिक इमारतों का आधार रखते देखा है? लोग अपने रहने के मकानों की नींव अधिकारियों से रखवाते, मैं इस प्रथा को क्यों कर तोड़ सकती हूँ? जिलाधीश को शिलारोपण के लिए निमंत्रित करूंगी, उन्हीं के नाम पर धर्मशाला का नामकरण होगा। किसी ठेकेदार से भी आपने बातचीत की? लेखराज, जी हाँ, मैंने एक ठेकेदार को ठीक कर लिया है, सज्जन पुरुष है, इस शुभ कार्य को बिना लाभ के करना चाहता है, केवल लागत मात्र लेगा। गायत्री, आपने उसे नक्शा दिखा दिया ना, कितने पर इस काम का ठीका लेना चाहता है? लेखराज, वह कहता है दूसरा ठेकेदार जितना मांगे उससे मुझे 100 रुपये कम दिया जाए। गायत्री, तो अब एक दूसरा ठेकेदार लगाना पड़ेगा, वह कितना तखमीना करता है? लेखराज, उसके हिसाब से 60,000 पड़ेंगे, माल मसाला सब अव्वल दर्जे का लगाएगा, 6 महीने में काम पूरा कर देगा। गायत्री ने इस मकान का नक्शा लखनऊ में बनवाया था, वहाँ इसका तखमीना 40,000 किया गया था। व्यंग भाव से बोली, तब वास्तव में आपका ठेकेदार बड़ा सज्जन पुरुष है, इसमें कुछ न कुछ तो आपके ठाकुर जी पर जरूर ही चढ़े जाएंगे। लेखराज, सरकार तो दिल लगी करती है, मुझे सरकार से यूं ही क्या कम मिलता है कि ठेकेदार से कमीशन ठहरा रहा है? कुछ इच्छा होगी तो मांग लूंगा, नीयत क्यों बिगाड़ूं? गायत्री, मैं इसका जवाब 1 सप्ताह में दूंगी। कानून को, और मुझे क्या हुक्म होता है? पंडित जी, आपने भी तो देखा होगा सारण और जगराओं के हुजूर की कितनी जमीन दब गई है। पंडित, जी हाँ, देखा क्यों नहीं, 100 बीघे से कम न दबी होगी। गायत्री, मैं जमीन देख कर आपको इतला दूंगी, अगर आपस के समझौते से काम चल जाए तो रार पढ़ाने की जरूरत नहीं। दोनों महानुभाव निराश होकर विदा हुए। दोनों मन ही मन गायत्री को कोस रहे थे। कानूनगो ने कहा, चालाक औरत है, बड़ी मुश्किल से हत्थे पर चढ़ती है। लेखराज बोले, एक एक पैसा दांत से पकड़ती है, न जाने बटोर कर क्या करेगी, कोई आगे पीछे भी तो नहीं है। अंधेरा हो गया था, गायत्री सोच रही थी, इन लुटोरों से क्यों कर बचूं? इनका बस चले तो दिन दहाड़े लूटूं। इतने नौकर हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे इलाके की उन्नति का ध्यान हो, ऐसा सुयोग्य आदमी कहाँ मिलेगा? मैं अकेली ही कहाँ कहाँ दौड़ सकती हूँ, ठीक है पर दे दूँ तो इससे अधिक लाभ हो सकता है, सब झंझटों से मुक्त हो जाऊंगी लेकिन असामी मर मिटेंगे, ठेकेदार इन्हें पीस डालेगा, कृष्णार्पण कर दूँ तो भी वही हाल होगा, वही ज्ञानशंकर राजी हो जाए तो इलाके के भाग जग उठें। कितने अनुभवशील पुरुष हैं, कितने मर्मज्ञ, कितने सूक्ष्मदर्शी, वह आ जाए तो इन लुटेरों से मेरा गला छूट जाए, सारा इलाका चमन हो जाए। लेकिन मुसीबत यह है कि उनकी बातें सुनकर मेरी भक्ति और धार्मिक विश्वास डवाडोल हो जाता है। अगर उनके साथ मुझे 2-4 महीने और लखनऊ रहने का अवसर मिलता तो अब तक फैशनेबल लेडी बन गई होती। उनकी बाड़ी में विचित्र प्रभाव है, मैं तो उनके सामने बावली सी हो जाती हूँ। वो मेरा कितना अदब करते थे, उनके स्वभाव में थोड़ी सी उच्छृंखलता अवश्य है, लेकिन मैं भी तो परछाई की तरह उनकी पीछे पीछे लगी रहती थी, छेड़छाड़ किया करती थी। न जाने उनके मन में मेरी ओर से क्या क्या भावनाएं उठ रही हैं। पुरुषों में यह बड़ा अवगुण है कि हास्य और विनोद को कुवृत्तियों से अलग नहीं रख सकते, इसका पवित्र आनंद उठाना उन्हें आता ही नहीं। स्त्री जरा हंसकर बोली और उन्होंने समझ लिया कि वो मुझ पर लट्टू हो गई। उन्हें जरा से उंगली पकड़ने को मिल जाए फिर तो पहुंचा पकड़ते देर नहीं लगती। अगर ज्ञान शंकर यहाँ आने पर तैयार हो गए तो उन्हें यहीं रखूंगी, यहीं से वह इलाके का प्रबंध करेंगे। जब कोई विशेष काम होता तो शहर जाएंगे, वहाँ भी मैं उनसे दूर दूर रहूँगी, भूल कर भी घर में ना बुलाऊँगी। नहीं, अब उन्हें अपनी धृष्टता करने का साहस ही ना होगा। बेचारा कितना लज्जित था, मेरे सामने ताक न सकता था। स्टेशन पर मुझे विदा करने आया था मगर दूर बैठा था, जबान तक न खोली। गायत्री ने विचारों में मग्न थी कि एक चपरासी ने आज की डाक उसके सामने रख दी। डाकघर यहाँ से 3 कोस पर था, प्रतिदिन एक बेगार डाक लेने जाया करता था। गायत्री ने पूछा, वह आदमी कहाँ है? क्यों रे, अपनी मजूरी पा गया? बेगार, हाँ सरकार पा गया। गायत्री, कम तो नहीं है? बेगार, नहीं सरकार, खूब खाने भर को मिल गया। गायत्री, कल तुम जाओगे कि कोई दूसरा आदमी ठीक किया जाए? बेगार, सरकार मैं तो हाजिर ही हूँ, दूसरा क्यों जाएगा? गायत्री चिट्ठियाँ खोलने लगी। अधिकांश चिट्ठियाँ सुगंधित तेल और अन्य औषधियों के विज्ञापनों की थी। गायत्री ने उन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। एक पत्र राय कमलानंद का था, इसे उसने उत्सुकता से खोला और पढ़ते ही उनकी आंखें आनंदपूर्ण गर्व से चमक उठी। मुखमंडल नव पुष्प के समान खिल गया। उसने तुरंत वह पैकेट खोला जिसे अब तक किसी औषधालय का सूची पत्र समझ रही थी। पूर्व पृष्ठ खोलते ही उसे अपना चित्र दिखाई दिया। वाले लेख का शीर्षक था गायत्री देवी, लेखक का नाम था ज्ञान शंकर बी। गायत्री अंग्रेजी कम जानती थी लेकिन स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से वह साधारण पुस्तकों का आशय समझ लेती थी। उसने बड़ी उत्सुकता से लेख को पढ़ना शुरू किया और यद्यपि 20 पृष्ठों से कम न थे, उसने आधे ही घंटे में सारा लेख समाप्त कर दिया और तब गौरवोन्मत्त नेत्रों से इधर उधर देख कर एक लंबी सांस ली। ऐसा आनंदोन्माद उसे अपने जीवन में शायद ही प्राप्त हुआ हो। उसका मान प्रेम कभी इतना उल्लसित न हुआ था। ज्ञान शंकर ने गायत्री के चरित्र, उसके सद्गुणों और सत्कार्यों का इतनी कुशलता से उल्लेख किया था कि शक्ति की जगह लेख में ऐतिहासिक गंभीरता का रंग आ गया था। इससे संदेह नहीं कि एक एक शब्द से श्रद्धा टपकती थी, किंतु वाचक को यह विवेकहीन प्रशंसा नहीं ऐतिहासिक उदारता प्रतीत होती थी। इस शैली पर वाक्य नैपुण सोने में सुगंध हो गया था। गायत्री बार बार आईने में अपना स्वरूप देखती थी, उसके हृदय में एक असीम उत्साह प्रवाहित हो रहा था, मानो वह विमान पर बैठी हुई स्वर्ग को जा रही हो। उसकी धमनियों में रक्त की जगह उच्च भावों का संचार होता हुआ जान पड़ता था। इस समय उसके द्वार पर भिक्षुओं की एक सेना भी होती तो निहाल हो जाती। कानूनगो साहब अगर आ जाते तो 500 के बदले 5,000 ले भागते और पंडित लेखराज का तखमीना दूना भी होता तो स्वीकार कर लिया जाता। उसने कई दिन से यहाँ के कारिंदे से बात न की थी, उससे रूठी हुई थी। इस समय उसे अपराधियों की भांति खड़े देखा तो प्रसन्न मुख होकर बोली, कहिए मुंशी जी, आजकल तो कच्चे घड़े की खूब छनती होगी। मुंशी जी धीरे धीरे सामने आकर बोले, हजूर जनेऊ की सौगंध है, उसे सरकार ने मना कर दिया, मैंने उसकी सूरत तक न देखी। यह कहते हुए उन्होंने अपने साहित्य प्रेम का परिचय देने के लिए पत्रिका उठा ली और पन्ने उलटने लगे। अकस्मात गायत्री का चित्र देखकर उछल पड़े, बोले, सरकार यह तो आपकी तस्वीर है, कैसा बनाया है कि अब बोली अब बोली, क्या कुछ सरकार का हाल भी लिखा है? गायत्री ने बेपरवाही से कहा, हाँ तस्वीर है तो हाल क्यों ना होगा। कारिंदा दौड़ा हुआ बाहर गया और वह खबर सुनाई। कई कारिंदे और चपरासी भोजन बना रहे थे, कोई भंग पीस रहा था, कोई गा रहा था, सबके सब आकर तस्वीर पर टूट पड़े, छीना छपटी होने लगी, पत्रिका कई पन्ने फट गए। यूँ गायत्री किसी को अपनी किताबें छूने नहीं देती थी और इस समय जरा भी न बोली। एक मुँह लगे चपरासी ने कहा, सरकार कुछ हम लोगों को भी सुना दें। गायत्री, यह मुझसे न होगा, सारा पोथा भरा हुआ है, कहाँ तक सुनाओगे? 2-4 दिन में इसका अनुवाद हिंदी पत्र में छप जाएगा, तब पढ़ लेना। लेकिन जब आसामियों ने एक स्वर होकर आग्रह करना शुरू किया तो गायत्री विवश हो गई। इधर उधर से कुछ अनुवाद करके सुनाया, यदि उसे अंग्रेजी की अच्छी योग्यता होती तो कदाचित वह अक्षरशः सुनाती। एक कारिंदे ने कहा, पत्र वालों को न जाने यह सब हाल कैसे मिल जाते हैं। दूसरे कारिंदे ने कहा, उनके गोविंदे सब जगह विचरते रहते हैं। यहीं कोई बात हो चट उनके पास पहुंच जाती है। गायत्री को इन वार्ताओं में असीम आनंद आ रहा था। प्रातःकाल उसने ज्ञान शंकर को एक विनयपूर्ण पत्र लिखा। इस लेख की चर्चा न करके केवल अपनी विडंबनाओं का वृत्तांत लिखा और साग्रह निवेदन किया कि आप आकर मेरे इलाके का प्रबंध अपने हाथ में ले लें, इस डूबती हुई नौका को पार लगाएं। उसका मनोमालिन्य मिट गया था। खुशामद अभिमान पर सिर नीचा कर देती है। गायत्री अभिमान की पुतली थी। ज्ञान शंकर ने अपने श्रद्धाभाव से उसे वशीभूत कर लिया।